ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जन्ममुदीरये। नष्टप्रायश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की शील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमनंदे। तो श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 8 श्लोक संख्या 2 नौ आज हिंदी में ही बोलते हैं, तो हिंदी में अंग्रेजी में बोलना था लेकिन हिंदी में बोर्ड है तो हिंदी में ही बोलते। नेक्स्ट टाइम अंग्रेजी में बोलने का हम प्रयास करेंगे। तो श्लोक बोर्ड में है, आवृत्ति करेंगे। आचार्य सुतस्ते साम बुद्धि एकांत संस्थिताम आलक्ष्य वितस्त्वरितो राग्य आवेदयत्यथा अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धिम एकांत संस्थिताम आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राग्य आवेदयत्यथा अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धिम एकांत संस्थिताम आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राग्य आवेदयत्यथा। अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धिम एकांत संस्थिताम अलक्ष्य भेतस्त्वरितो राग्य आवेदयत्यथा। अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धिम एकांत संस्थिताम अलक्ष्य भीतस्त्वरितो राग्य आवेदयत्यथा। अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धिम एकांत संस्थिताम अलक्ष्य भीतस्त्वरितो। अब पढ़िए। राज्ञयावेद पढ़िए। अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धि में कांत संस्थिताम अलक्ष्य भीत स्वरितो राज्ञयावेदयत्यथा। अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धि में कांत संस्थिताम अलक्ष्य भीत स्वरितो राज्ञयावेदयत्यथा। अथाचार्य सुतस्ते साम बुद्धि में कांत संस्थिताम अलक्ष्य भीत स्वरितो राज्ञयावेदयत्यथा। चार्य सुतस्ते साम तीन एकांत संस्थिताम माता जी, शब्दार्थ अथ तदुपरांत आचार्य श्रुत शुक्राचार्य के पुत्र तेसाम उन असुर पुत्रों बुद्धिम बुद्धि एकांत संस्थिताम केवल कहीं विषय भक्ति में स्थिर अलक्ष्य देखकर भीत भयभीत होकर त्वरित तुरंत राज्ञे राजा हिरण्यकश्यपु से आवेदयत कह सुनाया यथा उचित ढंग से। जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमरक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए और वे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। दोहराइएगा, जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमरक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए और तेरे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। तात्पर्य, बुद्धि में एकांत संस्थिताम शब्द सूचित करते हैं कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावना मृत है। तथ्य यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है वह कृष्ण भावना मृत में स्थिर हो जाता है और भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे विशेषतः देखा, अतः वे डर गए क्योंकि वे सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होते जा रहा था। जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमरक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए और वे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। तो इस अध्याय में भगवान नरसिंह देव असुर राज हिरण्यकश्यपु का वध करेंगे, इस अध्याय के प्रारंभ में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की सभा में प्रहलाद महाराज के भक्ति और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भक्ति में कितने उन्नत थे कि उनके संग से सारा विद्यालय कृष्ण भक्ति में बदल गया। जो हिरण्यकश्यपु का जो सिलेबस था वो बच्चे नकार दिए और प्रहलाद महाराज का जो दिव्य उपदेश है उसको स्वीकार कर लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल विद्यालयों में ज्यादातर हिरण्यकश्यपु के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि विद्यालयों में इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स अनेक प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं। ये विषय का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक धन कमाना, और नैतिकता से वो हटते जाते हैं। आज के एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? बाय हुक और क्रूक यू कैन अर्न मनी, जैसे भी पैसा कमाओ, चाहे किसी को ठग करके या जान मार करके या घोटाला करके या हवाला करके, लक्ष्य क्या है? धन कमाना। आज का एजुकेशन जो है केवल सेंट्रलाइज है, पैसा कमाना। पहले के विद्यालयों में नैतिकता, ऑनेस्टी और कृष्ण भक्ति, देशभक्ति या लोगों में समानता का ये पाठ पढ़ाया जाता था कि मानव समाज जो है भगवान के दृष्टि से, जो मानव सभ्यता की जो सृष्टि हुई है उसका लक्ष्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, यही समानता है। शारीरिक दृष्टि से, बुद्धि के दृष्टि से हम समान नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए हम सब समान हैं, सब योग्य हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश मिलता है, सबको समान रूप से प्रकाश मिलता है, वायु समान रूप से मिलता है, उसी तरह से कृष्ण भक्ति भगवान ने सबको समान रूप से दिया है और सबको समान अधिकार है। जैसे कहा जाता है कि जन्म से हमारा अधिकार है कृष्ण भक्ति करने का, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हमारा भारत गुलाम था तो नेता लोग कहते थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता है कृष्ण भक्ति करना। इसलिए जन्म सिद्ध जीव का अधिकार क्या है? कृष्ण भक्ति करना। तो संड अमर्क जब अपने विद्यालय के स्थिति को देखे तो बहुत घबरा गए और डर गए कि सारे बच्चे जो स्कूल का सिलेबस है उसको पढ़ नहीं रहे हैं, सब लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं या महामंत्र जप रहे हैं। तो उनको बहुत चिंता हुआ कि अब हमारी नौकरी चली जाएगी, अब हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे, और राज कर्मचारी के रूप में हम लोग नियुक्त किए गए थे, वो भी टीचर के रूप में, तो हमारा स्कूल बिल्कुल अलग ढंग से चला गया, जो सिलेबस है उसके विपरीत चला जा रहा है। तो सरकार या हिरण्यकश्यपु हम लोग को सस्पेंड कर देगा, हम लोग का जो वेतन भत्ता है, जो सुविधा है, जो राज्य सरकार के द्वारा जो आवास अलॉटमेंट किया गया है वो सब बंद हो जाएगा, उनकी ये चिंता हो गई। हिरण्यकश्यपु ने वार्निंग भी दिया था कि अगर दोबारा ये बच्चे नहीं सुधरेंगे तब लोगों को जान से मार दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने दोनों गुरु पुत्रों को आदेश दिया था, संड अमर को। संड अमर, संड का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि बिल्कुल संड हो। उन लोगों की बुद्धि बिल्कुल खाने कमाने और लता भाता में संड थी, उनको आध्यात्मिक चेतना नहीं थी, इसलिए वो लोग संड मंड रहते थे अपने खाने पीने में। इंद्रिय तृप्ति में वो संड मंड रहते थे। राजा से जो भी, हिरण्यकश्यपु से जो भी सुविधा मिलता था वो खा पी करके, और राजा जो कहता था वही कहते थे। राजा कहता था कि ये पढ़ाना है जी सरकार, हाँ हाँ, हाँ में हाँ मिलाते थे, वो नहीं कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो राजा कहता था वही वो लोग कहते थे। राजा कहता था कि ये पीपल नहीं है ये बरगद है, तो बोलते हाँ जी सरकार, ऐसे बोलते थे। हाँ मैं हाँ ठाकुर सुहाती कहते थे। तो राजा के हिरणकश्यप के दोनों जो टीचर थे चापलूस थे, चाटुकार थे, सत्य का प्रकाशन नहीं करते थे। यद्यपि संडमर्क शुक्राचार्य महान एक असुरों के जो लीडर हैं, जो असुरों के गुरु हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो नीति में निपुण हैं, शुक्र नीति, विश्व में दो नीति प्रसिद्ध है, शुक्र नीति उद्धव नीति और तीसरी जो है चाणक्य नीति और चौथी जो है आज के कूटनीति। आज जो कूटनीति है देश में जो नीति चल रही है कूटनीति, नेता लोग बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, वास्तव में राजनीति नहीं है, ये कूटनीति है। राजनीति तो भागवत में है, राजा का क्या पॉलिसी है, राजा का क्या नीति है कि प्रजा को जो है सुविधा मिले और कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिले। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के जो डेमोक्रेसी है इसमें सब डिमोक्रेसी की बात बताई जाती है, जो डेमोक्रेसी है डिमोक्रेसी है, आसुरी विचारधारा है, आसुरी तंत्र है। तो संड अमर्क, अमर का अर्थ होता है, अर्क माने सूर्य होता है, अमर्क जिसमें तेज विहीन हो उसको अमर्क कहते हैं। अर्क में अर्क जो है तेजस्वी होता है, तो बड़े तेजस्वी के पुत्र थे शुक्राचार्य, बहुत तेजस्वी थे, जो संजीवनी विद्या जानते हैं, मृत को भी जीवित कर देते हैं, जिनके यहाँ पढ़ने के लिए देवता लोग भी जाते हैं, जैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ भी पढ़ने के लिए गए थे। तो जिनके पिता ऐसे तेजस्वी थे उनके पुत्र जो है संड अमर्क हो गए थे, केवल राजा के ऊपर आश्रित थे, जबकि उनके पास ज्ञान था क्षमता था, लेकिन राजा की गुलामी स्वीकार कर लिए थे, जबकि उनमें योग्यता थी, लेकिन फिर भी वो जैसा राजा कहता था वैसा ही कहते थे। तो नीति शास्त्र में कहा गया है कि राजा वैद्य गुरु और मंत्री तीन अगर ठाकुर सुहाती करने लगते हैं तो राज्य का शरीर का और धर्म का नाश हो जाता है। गुरु जो है धर्म का शिक्षा देता है, धर्म क्या है धर्म क्या है, अगर गुरु भी लोभ से पद के लिए या धन के लिए अपने बड़े लोगों का अगर ठाकुर सुहाती करता है तो धर्म की व्याख्या सही नहीं हो पाती है। और वैद्य जो है वो भी रोगी के अनुकूल बात करने लगता है उससे पैसा लेने के लिए, तो उस रोगी का नाश हो जाता है। और मंत्री जो है राजा के ठाकुर सुहाती बोलने लगता है, राजा का चापलूसी करने लगता है, तो राजा के राज्य का नाश हो जाता है। राजा के पास मंत्री होते हैं जो मंत्रणा देते हैं, हर जितने भी राजा होते हैं मंत्री रखते हैं, योग्य मंत्री, जैसे आजकल भी जो मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइजर होते हैं, एडवाइस देने वाले सलाहकार होते हैं, कोई आईएएस होता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, ऐसे लोगों को मंत्री लोग अपना सलाहकार रखते हैं, सब मंत्री के सलाहकार होते हैं एडवाइजर होते हैं, तो उसके अनुसार वो लोग मंत्रणा लेकर के फिर विचार विमर्श करके तब कानून बनाते हैं। जो मंत्र देता है वो मंत्री है, मंत्री लोग मंत्र देते हैं, ये मंत्र है इसे आप कार्य करेंगे तो काम हो सकता है। जैसे वो कृष्ण के भी मंत्री थे उद्धव जी, कृष्ण को मंत्रणा देते थे, कृष्ण तो सर्वविद्ध है, सब कुछ जान लेंगे, फिर भी उद्धव जी से मंत्रणा लेते थे। तो मंत्री जो सही मंत्र दे, सही सलाह दे, वो मंत्री है। अगर राजा का चापलूसी करता है धन के लिए या भय से उसके अनुकूल बात करता है तो राज्य का नाश हो जाता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, प्रिय बोलहि भयास, भय से नहीं तो आशा से कि कुछ मिल जाए। जैसे डॉक्टर लोग रोगी को ऐसा दवा देते हैं कि वो दवा खाते रहे जीवन भर और बीमार भी रहे वो जीवन भर दवाई खाते रहे कि हमारा जो इनकम का जो स्रोत है बना रहे। वो एक दवा से भी कभी कभी एक टैबलेट में आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जो है उसको बहुत प्रोसेस, लंबा प्रोसेस में खींच लेता है। सोचता है कि हमेशा आएगा तो पैसा देगा। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, वो प्रिय बोलता है, उसके रोगी के अनुसार बोलता है। जब वैद्यकीय जो परामर्श है वह नहीं बताता है तो उसे रोगी का जो है शरीर का नाश हो जाता है। तो रोगी को वैद्य के अनुसार नहीं देना चाहिए। जो इलाज है, जो शास्त्र में, जो आयुर्वेद में या एलोपैथ में या होम्योपैथ में जो पद्धति है वो बताना चाहिए कि इस पद्धति से आपको ये चीज लेना चाहिए। लेकिन जो रोगी मांगे वो वैद्य बताए, जो रोगी मांगे वही वैद्य भी बताए, जो रोगी को अच्छा लगे वो वैद्य भी वही बताया, तो रोगी जो है ठीक नहीं हो पाता है। तो यहाँ शुक्राचार्य के दो महान पुत्र संडमर्क वही बात कहते थे जो राजा को अच्छा लगे। वो यह नहीं कहते थे कि नहीं विद्यालय में अच्छा वातावरण है, विद्यालय में सब लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात थी, प्रचार बहुत अच्छा हुआ था, सब विद्यालय में प्रहलाद महाराज जा जा करके सबको भक्त बना दिए थे। जैसे कॉलेज में प्रीचर लोग जाकर प्रीचिंग करते हैं वैसे प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा प्रीचिंग किए थे। लेकिन हिरण्यकश्यपु को, हिरण्यकश्यपु का जो थ्योरी था इसके विपरीत था। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि सब विद्यालय में उसका कीर्तन हो, उसका नाम जप हो। वो घोषित किया था कि मैं ही ईश्वर हूँ, हमारे अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। हर विद्यालय का सिलेबस में ऐड कर दिया था कि हिरण्यकश्यपु जो है यही विश्व ब्रह्मांड के सृजन करता है, पालन करता है, वही सब कुछ है। तो विद्यालय में प्रार्थना भी वही होता था। जैसे विद्यालय में प्रार्थना हम लोग कर, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु चषका तुमेव, तो उस विद्यालय में केवल हिरण्यकश्यपु का ही प्रार्थना होता था, सब बच्चे हिरण्यकश्यपु के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज सत्य को उद्घाटित किए, सत्य का प्रकाशन किए और कहे नहीं, इस हर विश्व ब्रह्मांड के एक ही मालिक है, एक ही रचयिता है, वो भगवान है, कृष्ण ही सबके मालिक हैं, वही सबके आदि हैं, वही अनादि भी हैं और वही सब कुछ के कारण हैं। तो नारद मुनि ने ऋषि महाराज के सभा में प्रहलाद महाराज के इन विचारों को बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक होकर के बिना डरे हुए, जबकि हिरण्यकश्यपु से सारे लोग डरते थे, सब देवता लोग भाग गए थे, देवताओं को भी अपने सेवा में नियुक्त कर दिया था हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी भी डर गए थे, और ब्रह्मा जी का भी पद हथियाने वाला था, ब्रह्मा जी से ही शिक्षा प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से ही तपस्या करके वर प्राप्त किया था, लेकिन ब्रह्मा जी को भी वो कुछ नहीं समझता था। वो ब्रह्मा को भी अपने अधीन करना चाहता था। अब ब्रह्मा भी उनसे हिरण्यकश्यप से घबरा रहे थे। बाकी और जितने भी देवता थे सबको अपने सेवा में नियुक्त कर दिया था। सब लोग डरते थे, उसके सामने कोई नहीं आता था। लेकिन एक छोटा बालक जो है बड़े निर्भीक होकर के जब संडमर्क स्थिति देखे कि स्कूल की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है और सब बच्चे हम लोगों का जो सिलेबस है, हम लोगों का जो पाठ्य है, पाठ्य पुस्तक उसको फेंक दिए और टीचरों का बहिष्कार कर दिए, सब बुढ़िया बस्तर कापी किताब फेंक करके सब कृष्ण भक्ति में आ गए। ऐसा हो गया तो डर से संडमर्क जाकर के हिरण्यकश्यप से कहे, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आमंत्रित किया। प्रहलाद बड़े निर्भीक भाव से खड़े हो गए हिरण्यकश्यप के सामने। इस बात को नारद मुनि कहे कि एक छोटा बालक जिसे बड़े बड़े देवता भी डर जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक थे, डरे नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम क्यों विद्यालय में इस तरह का पाठ पढ़ाए हो, क्यों सब बच्चों को गलत पाठ पढ़ाते हो, तुम जानते नहीं मैं ईश्वर हूं, मैं इस संसार का भोक्ता हूं, मैं सृष्टा हूं। प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भीक भाव से कहे कि सत्य ये है कि आपको भगवान का भजन करना चाहिए, उनकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। आपके आपसे भी बड़े बड़े जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिसने भी ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध लोक चारण लोक सब भगवान के अधीन हैं, विद्यापति विद्याधर ये सब लोग भगवान के अधीन हैं, आप भी उसी भगवान के अधीन हैं। जो कुछ भी आपको मिला है भगवान के कृपा से मिला है, आपको भगवान की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए और उनका भजन करना चाहिए। इस संसार में कोई भजनीय है तो भगवान है। प्रहलाद महाराज अस्पष्ट अपने पिताजी से कह दिए, आपको भी अब यह असत्यमति का त्याग कर देना चाहिए। मेरा यह विचार नहीं है, सारे ऋषियों का विचार है, सदग्रंथों का विचार है कि भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश को सुन करके हिरण्यकश्यप जो है बिल्कुल क्रोध से तिलमिला गया, जैसे कोई सांप को अपने पैर से ठुकरा देता है, जैसे सर्प को कोई पैर से मार दे तो ऐसे क्रोध में हो जाता है, वैसे हिरण्यकश्यप जो है बहुत क्रोध में हो गया। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव था कि सब कृष्ण भक्त बन गए, सब बच्चे। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि सब बच्चों को बिगाड़ दिया, जितने असुरों के पुत्र से सब बिगड़ गए, हिरण्यकश्यप के सब बच्चों को इसने बिगाड़ दिया, यही कारण है, तो इसको अभी खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए, उन्हें अपने तथा कथित गुरुओं संड तथा अमर की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जिन्हें केवल कूटनीत राजनीत आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ही विषयों की शिक्षा दे रहे थे। स्कूल में केवल यही शिक्षा है, कूटनीत राजनीत आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पर बहुत बड़े बड़े किताब लिखे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, विश्व इकोनॉमिक्स को कैसे ऊपर उठाया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पॉलिटिकल साइंस में कैसे अच्छा से पब्लिक उलू बनाया जाए, पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाया जाता है, राजनीति विज्ञान, तो नेता लोग सोचते हैं कि पब्लिक को कैसे जो है भ्रमित करके वोट ले लेते हैं। लोग बोलते हैं हमको वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम देश का बहुत तरक्की करेंगे, विश्व में आपके देश का नाम ऊंचा कर देंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। और बोलते हैं कि हमको आप वोट देंगे तो आपका सारा टैक्स जो है हम माफ कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ राशन है, बिजली है, पानी है, सब हम मुफ्त में देंगे। सब अपने मैनिफेस्टो में ऐसे लिखते हैं लोग। और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनका हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए अलग होते हैं। हाथी का दांत जो है खाने के लिए अलग होता है और दिखाने के लिए अलग होता है। तो आज के राजनीति में, कूटनीति में जो आसुरी तंत्र है, जो हिरणकश्यपु जैसा जो सिद्धांत है, वो आ गया है। लोग बोलते हैं करते नहीं हैं। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक जो केवल बोलते हैं, और एक जो है बोलते भी हैं और करते भी हैं, और एक जो है बोलते नहीं है केवल करते हैं। जैसे तीन प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष होता है वो फूलता भी है और फलता भी है, फूल भी देता है और फल भी देता है। जैसे बेल का वृक्ष है, पहले फूल आता है, अब लोग इसके बाद पतझड़ के बाद जो है अप्रैल मई में इसमें फूल भी आता है छोटा छोटा, कि भाई फल जाने के बाद में फिर फूल के बाद फल आता है। जैसे आम में फूल आता है, मज्जर आता है, फिर फल आता है। अधिकांश वृक्षों में फूल और फल दोनों होता है, लेकिन किसी किसी में केवल फल होता है, फूल नहीं होता है। और किसी में कोई ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिसमें न फूल होता है न फल होता है। जैसे बेत जो है न फूल देता है न फल देता है। आम जो है फूल और फल दोनों देता है, कटहल केवल फल देता है। कटहल ना जो पनस है उसमें केवल फल होता है, और आम में फूल और फल दोनों होता है, लेकिन बेत में फूल ही नहीं बेत, यद्यपि सुधा वर्ष ही जलदा, यद्यपि अमृतमयी वर्षा हो तो भी बेत जो है फलता फूलता नहीं है। तो आज का जो परिवेश है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिक्षा में केवल ही पढ़ाया जाता है, जो स्कूल के लाइब्रेरी में बड़े बड़े जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं वैसे लोगों का किताब पढ़ाया जाता है। जैसे डार्विन का सिद्धांत है, मार्शल का, इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स का सिद्धांत है, हिस्ट्री में बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं वो जो नोबेल प्राप्त हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यादातर जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनको ABCD का कुछ ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक उनको कोई ज्ञान नहीं है। मार्शल ने इकोनॉमिक्स का सिद्धांत दिया है, फिर उसके ऊपर रॉबिन्स का सिद्धांत है, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई सिद्धांत आता, लेकिन कोई प्रमाणिक नहीं सिद्धांत हुआ। डार्विन का सिद्धांत है वो भी प्रमाणिक नहीं है, कुछ समय तक रहता है फिर बाद में उसका लोग खंडन कर देते हैं। तो वर्तमान में जो कुछ हमारे पास शिक्षा पद्धति है वो बिल्कुल बिगड़, उसकी पद्धति बिगड़ गई है। वो शिक्षा पद्धति में जो इस विज्ञान के विषय में कोई ज्ञान नहीं, इस चेतना का कोई उसमें उल्लेख नहीं है, ईश्वर विहीन जो कुछ भी है वो विद्या नहीं है। वास्तविक विद्या है जिसमें आत्मा के विषय में ज्ञान हो, परमात्मा के विषय में ज्ञान हो। पहले के सिलेबस में पढ़ाया जाता था, अब सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है, निकाल दी गई हैं। तो जिस विद्या में कृष्ण के विषय में, आत्मा के संदर्भ में, शरीर के विषय में हर जगह चर्चा है, शरीर के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहे हैं, एक एक शरीर के इलाज के लिए एक एक डॉक्टर होते हैं, जैसे डेंटिस्ट होते हैं वो दांत के विषय में जानकारी किए हैं, आईज के डॉक्टर होते हैं वहां के विषय में केवल जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई ब्रेन का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का होता है, कोई लीवर का होता है, किडनी का होता है, आत्मा का कोई डॉक्टर नहीं है। अनेक प्रकार के डॉक्टर हैं शरीर को ठीक करने के लिए, कि आत्मा का जो अधोगति हो गया है, आत्मा का जो बंधन है उस बंधन से मुक्त करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं है। शरीर को ठीक करने के लिए रोज नए नए विज्ञान बनाए जाते हैं, नए नए स्कूलों में एजुकेशन दिया जाता है और डॉक्टर भी बनते हैं, बड़े बड़े रिसर्च करता साइंटिस्ट होते हैं सब शरीर पर और शरीर को ठीक करने के लिए। ये आत्मा का जो विज्ञान है उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा को कैसे बद्ध जीवन से मुक्त अवस्था में लाया जा सकता है, आत्मा को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में सारा संसार जो है और माया में और जकड़ते जा रहा है, उसको आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में कोई ज्ञान लेने का या देने का अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह स्कूल में संडमर जैसे टीचर की बहाली हो रही है और उनको रिस्ट्रिक्शन भी है कि आपको यही पढ़ाना है। तो ऐसे टीचर की बहाली होती है और सरकार भी ऐसे टीचर को ही प्रमोशन देती है और उनको सुविधा देती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत सरकार को सुझाव दिए थे श्रील प्रभुपाद जी, भारत के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया, लेकिन प्रभुपाद जी ने 10 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने बताया था कि 10 चीज होना चाहिए, कि विद्यालयों में प्रार्थना हो, कृष्ण का कीर्तन हो स्कूल में प्रारंभ में, पार्लियामेंट में प्रारंभ में, पार्लियामेंट का जब संचालन हो तो पहले कीर्तन होना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए। 10 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीज बताया था इंदिरा गांधी को, देश में गो हत्या नहीं होना चाहिए, गाय जो है हमारी संपत्ति है, भारत की आर्थिक की नींव जो है गाय है, पहले वैदिक काल में गाय जो है से ही इकोनॉमिक्स को ये दिया जाता था, मजबूती दिया जाता था, जिसके बाद ज्यादा गाय होती थी उसको लोग धनी मानते थे। जैसे नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी, जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसको ज्यादा धनी माना जाता था। गाय वास्तव में जो देती है वो अमूल्य चीज है, उसका कोई मूल्य नहीं है। से डेनमार्क में विश्व में सबसे ज्यादा अधिक दूध और बटर है, चीज है, सब सप्लाई करता है, और देश में गाय हो, अधिक से अधिक गायों का पालन हो तो उसे हमारी इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है। दूध से अनेक प्रकार के चीज बनते हैं, जो आज मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा क्या है, घी, घी है, क्रीम है, या दही है, लस्सी है, पनीर है, ये सब चीज अगर आप इसका काऊ मिल्क प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे तो बहुत पैसा आएगा। गाय के दूध से अनेक प्रकार के अनेक प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे पैसा नहीं आता है, बहुत पैसा आएगा। और गाय गोबर देती है, उससे भी कंपोस्ट बनता है। गाय के गोबर से अनेक प्रकार के सुगंधित अगरबत्तियां बनती हैं, गाय के गोबर से अनेक प्रकार के जैविक खाद बनते हैं, गाय के गोबर से अनेक प्रकार के घरेलू चीजें जैसे फेनाइल है या जलाने के लिए धूप है, जैसे मच्छर भगाने के लिए लोग ऑल आउट का यूज करते हैं। तो गाय का आप गोबर जला दीजिए तो मच्छर भाग जाते हैं, या दांत के लिए लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। गाय के गोबर का जला हुआ जो राख है उसको पेस्ट बनाकर यूज करिए, दांत ठीक रहेगा। गाय से बहुत कुछ है, गाय से मंथली आप 20,000-30,000 रुपए का इनकम कर सकते हैं। गाय से ज्यादा और कोई चीज नहीं है जिससे इकोनॉमिक्स को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज के लोग इजी रास्ता अपनाना चाहते हैं, सरल ढंग से कोई पैसा तान दो दे दो जल्दी एक दिन में लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। किसी को ऐसे काटा से बोलते हैं दे दो करोड़ रुपया, रातों रात करोड़पति हो गए, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। लेकिन गाय से बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले के लोग गांव में दो गाय रखते थे और गाय से उनका पूरा परिवार जो है, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते थे लोग। गाय का गोबर से कंडा बनाते थे, उसको जलाकर खाना बनाते थे, जल गया राख को खेती में डाल देते थे, और गाय के दूध से दही बनाते थे, छाछ सेवन करते थे, घी से अपना बाकी कारोबार करते थे, घी को मार्केट में बेच करके उसे परिवार चलाते थे। फिर गाय का बछड़ा होता था, वो बछड़े को खेती के काम में लाते थे, या बछड़े अधिक हुए तो सेल करके उसे भी पैसा करते थे, या बछड़े से बहुत सारा काम लिए जाते थे, जैसे बैलगाड़ी में बछड़े को लगाना, वजन ढोने में बछड़े को काम में लेते थे लोग। तो गाय से हमारा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, खेती से गाय का बहुत संबंध है। आज खेती में अनेक प्रकार के हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अगर गाय का गोबर यूज कीजिए तो बहुत अच्छा होता है, जमीन की उर्वरा भी बनती है और पौष्टिक, वो अनाज में पौष्टिकता भी रहता है। तो आज के लोग जानते नहीं है, सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ये रूढ़ीवादी है, गाय से कुछ नहीं होता। नहीं, गाय वास्तव में सब कुछ देती है, वो हर चीज को गाय दे सकती है। और शास्त्र में कहा गया गाय केवल दूध ही नहीं देती है, गाय जो है काम धेनु है, हमारी सारी कामनाओं को भी। गाय के ऊपर सारे देवता निवास करते हैं, तो गाय की सेवा करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। और गाय की कृपा से वो गोविंद को भी प्राप्त कर लेता है, गोविंद जिसके शरीर में निवास करते हैं, गाय के शरीर में सारे देवताओं समेत। तो पहले के लोग, हर आदमी गाय रखता था, घर में जरूर एक गाय होती थी। अब विचार कीजिए, कुछ समय के बाद गैस पर सब्सिडी दिया जा रहा है, आगे एक बोतल गैस ले आते हैं सब्सिडी से, सरकार सब्सिडीज को हटा लेगी तो गैस बहुत महंगा हो जाएगा। तो आप भोजन बनाने के लिए जो गैस यूज कर रहे हैं, वो आगे चलकर 3,000-4,000 रुपये में एक सिलेंडर मिलेगा, 5,000 हो जाएगा, तो कहां से इतना खर्च करेंगे। अगर गाय का उपयोगिता अगर आप समझते हैं तो सर विचार कीजिए कि एक गाय से परिवार का पूरा खाना पक सकता है, एक गाय के गोबर से उसके कंडे में पूरे परिवार का 10-15 आदमी का खाना बन जाता है। तो गाय के गोबर से मंथली आपको 5000 रुपए का तो एक बचत हो जाएगा। और फिर उसका जला हुआ खेती में उर्वरक काम में आ जाता है। फिर दूध है, गाय बछड़ा देती है, मर करके भी उसके चमड़े से पहले लोग जूता बनाते थे। तो ये सब चीजें जो है पहले बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। और हवन में भी गाय का ही घी उपयोग में लाया जाता है। वैदिक कोई भी अनुष्ठान के लिए गाय का दूध जो है घी ये सब काम में आते हैं। गाय का दीपक जहाँ जलता है, गाय के घी का दीपक, तो वहाँ के वातावरण में पॉल्यूशन खत्म हो जाता है। और अब पेट्रोल डीजल डलाइए तो वातावरण में पॉल्यूशन होता है, घी का दीपक जलाइए तो वातावरण में जो अनिष्टकारक जो तत्व हैं नष्ट हो जाते हैं। गाय का घी अब जहां भी अग्नि में डालते हैं तो वातावरण बहुत सुंदर माहौल, बहुत सुंदर सुगंध फैलता है। पहले गांव में लोग गाय के घी को जला करके दाल में छौंक मारते थे, बहुत दूर तक उसका सुगंध जाता था, स्मेल। तो आज के जो तंत्र है, जिसको राजतंत्र से प्रजातंत्र में बदल दिया गया है, तो प्रजातंत्र में ये जो वैदिक चीज है इसको सब भगा दिया गया। जितने भी वैदिक रीति रिवाज थे सब खत्म हो गए। जैसे हिरण्यकश्यपु के राज्य में संडमर विद्यालय में बिल्कुल वही चीज पढ़ाते थे जो हिरण्यकश्यपु कहते थे, या जो वेद के विरुद्ध होता था। वेद संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, गाय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत पढ़ाते थे वो लोग। वेद में वेद का वाक्य क्या है? वेद का वाक्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। सर सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी मंगलमय हों, इस तरह की सबकी कामना, सब ऐसी कामना करें दूसरे के लिए भी कि सब सुखी रहें, सब आगे बढ़ें। ये वैदिक, ये वेद का आदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका दुख जो है भागे। लेकिन आजकल क्या है, आज का विपरीत पढ़ाई है कि कैसे भी अब हम सेफ्टी रहें, हम सुरक्षित रहें। बड़े बड़े देश जो है आविष्कार करें एटॉमिक बम या अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, क्यों? दूसरे को दुखी करने के लिए और अपने सुरक्षित। लेकिन वास्तव में दूसरे को हम असुरक्षित करके सुखी नहीं रह सकते हैं। तो हिरण्यकश्यपु का जो राजतंत्र था कि सबको दुखी करके, शोषित करके हमको बलवान बनना है, उसके राज्य में यही सिद्धांत था। तो आज जो देश सबसे उन्नत है विज्ञान में, अस्त्र बनाने में, तो क्यों बनाते? दूसरे को डराने के लिए, दूसरे को धमकाने के लिए, या दूसरे को बोलेंगे हम आपके ऊपर बम बरसा देंगे, आपको ये करना है। तो वेद, वैदिक सिद्धांत में पूरा विश्व को जो है कुटुंब माना गया है, वसुधैव कुटुंबकम्। पूरा पृथ्वी जो है अपना परिवार की तरह लोग देखते थे, वसुधैव कुटुंबकम्। और सबको जो है अमन चैन से रहने का, सबको सुविधा देने का, सभी सुखी रहें, सभी कृष्ण भक्ति में, ये वेद का आदेश है। वेद ये कहता है। रति रमन प्रभु कहते हैं कि अपना काम बनता और भाण में जाए जनता। आज का जो लोकतंत्र है, लोग बोलते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोक मतलब लोग को ही लोक कहा जाता है। हमारा लोकतंत्र जो है लोगों को सुखी बनाने के लिए है, सब सुखी रहें, किसी को भय ना हो किसी से। आज तो सबको भय है, हिंदू को मुस्लिम से भय, मुस्लिम को हिंदू से भय है, तो क्रिश्चियन को मुस्लिम से भय है, तो यहूदी को पारसी से भय, ऐसे सब भयभीत हैं एक दूसरे से। बोले इसकी संख्या बढ़ रही है तो भारत गुलाम हो जाएगा। हर आदमी भयाक्रांत है, यही लोकतंत्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं लोकतंत्र है, हर आदमी भयभीत है। लेकिन वेद तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, कोई भयभीत न हो। बोलते अभी ये राजा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सबको भय है। पहले कोई राजा हो रानी हो सब सुखी रहते थे, कौन रिप हो ही हमें कहानी। आजकल तो बोलते हैं हमारा पक्ष का राजा हुआ है तो हमारा विकास होगा, ये हमारे जाति का राजा बनना चाहिए तो हमारे जाति का विकास होगा। आज जाति धर्म और देश की राजनीति हो रही, पहले ऐसा नहीं था। जो भी सम्राट होता था वो सबके लिए होता था, पशु पक्षी सबका देखभाल करता था वो। आज तो लोग सोचते हैं कि हमारे जाति का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो हमारा देश जो है विश्व में सबसे अग्रणी होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र नहीं है वास्तव में। लोकतंत्र में हर नागरिक को जीने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए, उसको कृष्ण भक्ति करने के लिए सुविधा होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु के राज्य में जो टीचर थे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, वो स्वतंत्र नहीं थे। जैसा हिरण्यकश्यपु कहता वैसा ही उनको पढ़ाना पड़ता था। बोलता था कि ये गाय को भैंस बोलता था, भैंस बोलते थे लोग, यहाँ भैंस है। वो बोलता था आपको यही पढ़ाना है, तो वही करते थे। तो ऐसे अधिकारी और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और राजा से देश जो है रसातल में चला जाता है, जनता का कोई कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि देश का जो शासक है अगर वो कृष्ण भक्त हो तो वो अच्छा तरह से प्रजा का देखभाल कर सकता है। वो जो कुछ भी करेगा वो सब प्रजा के लिए करेगा। पहले के जो राजा होते थे, जैसे राजा रघु, उनके राज्य में सबके लिए समान अधिकार था। जो कुछ भी प्रजा के लिए जरूरी होता था वो पहले होता था। जो भी टैक्स कलेक्ट होता था सब प्रजा के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता था। राजा अपने लिए कुछ भी नहीं रखता था, अपने प्रजा जैसा रहता था। राजा रघु के राज्य में एक बार वर्तंतु मुनि के आश्रम में एक शिष्य था कौश, तो गुरु के लिए राजा के पास गया कुछ धन लेने के लिए कौश। तो राजा रघु के पास गया तो देखा राजा रघु बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह जमीन पर बैठे थे, कुश के आसन में, और मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के सकोरे में खा रहे थे। बिल्कुल बलकल धारण किए थे, बिल्कुल गरीबी अवस्था में थे। तो कौश ने देखा तो कहा कि इनसे मांगना उचित नहीं है। तो राजा रघु कहे कि आप किस प्रयोजन से आए हैं, वर्तंतु मुनि के तपश्चर्या में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है ना? वर्तंतु मुनि के आश्रम में, जलाशयों में, या गायों के लिए चारागाह में घास की कमी तो नहीं हो गई है? किस लिए आए हैं आप, क्या आने का क्या प्रयोजन है? वर्तंतु मुनि के लिए मैं क्या सेवा दे सकता हूँ? तो कौश देखा और कहा कि मैं क्या आपसे मांग सकता हूँ, आप खुद ही भिखारी हैं। तो पता चला कि विश्वजीत यज्ञ में सब धन जो है बांट दिए थे, गरीबों में, गायों के सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए, या जो भी प्रजा को जो जरूरी था सब धन जो है राज का जो कोषागार था सब बांट दिए थे। तो ऐसे जो है ऐसे शासक पहले होते थे, वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, तो प्रजा के हित में सब कुछ होता था। तो आज जो स्थिति है विश्व में, हर देश की स्थिति है बहुत दयनीय है। हर जगह जो है करप्शन हो रहे हैं, हर विभाग में देश का कैसे, नागरिक का कैसे कल्याण होगा। जो बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं वो पैसे भर रहे हैं, आम आदमी जो है खाने बिना मर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे इस सब बुराइयों का जड़ है कृष्ण भक्ति विहीनता। अगर सब लोग कृष्ण भक्ति को अपना लेंगे तो अपने आप सदाचार का पालन करने लगेंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है होना चाहिए। और विद्यालयों में और सर्वप्रथम जो राष्ट्र के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको कृष्ण भक्ति करना चाहिए, उनको गीता भागवत का अनुसंधान करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सुझाव दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति के, भारत के प्रधानमंत्री को, पंडित लाल बहादुर शास्त्री को भी उन्होंने गीता दिया और कहा गीता के आधार पर आप शासन करिए, तब देश का वास्तविक विकास होगा, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जी जो दिए हैं अगर ये अपनाया जाए तब विश्व में शांति कायम होगी और देश का हर नागरिक खुशहाल होगा और तब देश का वास्तविक आर्थिक विकास होगा। प्रभुपाद जी को के सिद्धांत को आज जरूरी है अपनाना, तो इसको अपनाने के लिए हर आदमी आगे आएंगे, प्रचार करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, तो हर जनमानस में प्रभुपाद जी के विचार को, मतलब कृष्ण के विचार को लोग अपनाएंगे, तब विश्व में शांति हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तब सुख शांति कायम हो सकती है, नहीं तो शांति नहीं होगी। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।